जो थे स्तंभ इत्यादि, उनको कुछ प्रेरणा दी और प्रेरणा देने पर ये लोग, यहाँ सोमनाथ का मंदिर है, क्या वो जगह
प्रभात,
वहीं पर ऋषि आश्रम लोग चातुर्मास्य व्रत मना रहे हैं, जिसमें नारद जी हैं, दुर्वासा ऋषि हैं, कभी कभी इत्यादि हैं, बड़ी बड़ी संतों का समावेश हुआ, बड़े आनंद से उनका सत्र हरि कथा का जैसे यहाँ चल रहा है वहां तक चल रहा है। कुछ उदंत लड़के, उदंत का काम कर, ये कृष्ण के सब बेटे हैं ना, इनमें नहीं हो सकते, किंतु योग माया को दिखलाना था। जैसे आजकल बहुत उदंत लड़के बंगाल में तो अत्यंत थी, साधु संतों को देख करके कहा कि ये कौन है घूमते जा रहे, लड़कियां तक भी छड़ गई उनको। अब धीरे धीरे, पहले यहाँ था जो साधु संतों को जय श्री राधे 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 करते थे, कोयल राधे राधे करते थे, चौकदार सब राधे राधे करते थे, सभी वातावरण राधे राधे करते। अब जमाना धीरे 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 अब पलट, अब हमारे बच्चे लोग नगर संकीर्तन में जाते हैं तो कुछ कहते हैं कि नहीं मुलायम सिंह की जय, मुलायम सिंह की जय, और मुलायम सिंह राजे ने कहा चले, अब लोग छेड़खानी करने लगे, अब राधे राधे नहीं करते, अब लोग मायावती या क्या क्या कहेंगे, माया देवी की जय हो, माया देवी की जय। तो इस तरह से जमाना पलट रहा है, इसको दिखलाने के लिए अपने पुत्रों के द्वारा ही उन्होंने दिखलाया। कृष्ण के जैसे अर्जुन परिकर है, ये अज्ञानी बनकर के कृष्ण से गीता का यह सुनाना, ऐसे ही जैसे परीक्षित महाराज कृष्ण के परिकर हैं, वो मरणशील मनुष्य जैसे अपने करके श्रीमद भागवत को श्रवण किया। लोग समझ नहीं पाए जी परीक्षित महाराज जी कौन, उसी तरह से सामने इत्यादि को एकत्र करके भेज दिया, वो दंड होकर के सांब को लड़की सजाया, बड़े सुंदर थे, बस लड़की सजा दिया, कुछ केस भी बड़े बड़े थे, उन्होंने केस को इससे ढक लिया और 16 श्रृंगार करके ले गए, पेट को थोड़ा सा ऊंचा बना दिया, ये गर्भवती है, जाकर के सब लड़के उदंड ऋषियों से बोले, महात्मा जी आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, जरा बतलाओ ये नई बेटी ब्याह करके आई है, इसको गर्भ है, तो आप बतलाइए इसको बेटा होगी कि बेटा बेटी होगी। हम लोग बड़े इसके लिए कौतूहल है, घर वाले भी बड़े असमंजस में, किसी ने कहा भी आज बेटी, किसी ने कहा बेटा हो, आप बतलाए, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, पांच बार जब कहने लगे तुमको क्रोध हो, दो बार सारे सामने आ गए, अच्छा बेटा होगी कि बेटी होगी बतलाऊं, ये बेटा और बेटी नहीं, इसके पेट से मूसल निकलेगा, और ऐसा तैसा नहीं मूसल, तुम्हारे जंतु को भंग करके बराबर कर देगा, ऐसा होगा, जाओ काने के साथ मूसल के करके जल्दी से गए, और थोड़ी देर जाकर के शाम को, और शाम के लिए उन्हें हवाई उड़ने रखते और उनके साथियों के लिए, उन्होंने कहा जैसे भाई पेट खोलो जल्दी से, और कपड़े खोला उसके ऊपर में तवा बांध करके रखा था, यहाँ कपड़े नीचे करके और तवा को जहीं हटाया नीचे से एक मुसल इतना बड़ा गिर गया। मुसल आप लोग जानती हैं कि नहीं, आजकल तो मुसल टूटा सब गया है, क्योंकि क्यों चला
गया मिक्सी हो गया,
आजकल स्त्रियां छाटती नहीं है, तो बस मशीन खरीद लिया है या चक्की पर आटा दे आएंगे, बस हो गया, ब्लड प्रेशर से मर गई, ताकि परिश्रम करती थी कोई रोग नहीं आता, तो ये मुसल भी नहीं जानती। मुसल होता है बहुत लंबा, कर तीन हाथ चार हाथ का, वो होता है बबल के लकड़ी का, बहुत मजबूत, और लोहे का उसमें काम है, उसे दाल चावल गेहूं और सब चीजें कुक करके रसोई के लिए उपयुक्त बना करके आज चक्के छिलके अलग कर दिए जाते, बस वो इतना का मुसल और उसमें लोहे लगा हुआ निकल करके गिर पड़ा और डर गए, ये तो सत्य कहा है। बस उग्र से महाराज के यहाँ गए, उग्र महान महाराज, अरे तूने क्या किया, कृष्ण से मत कहा, ये तो बड़ा तुमने गड़बड़ किया है, अब तो हमारा भंग होने वाला है। तो जाकर इस बात पर मुसल्ला कुशल लेकर अपने नौकरों को हुक्म दिया, अच्छी तरह से इसको जला दो। मुसल उन्होंने हाथ जला करके और उसको जला दिया, रात को एकत्रित कर लिया और आ गया लोहा, लोहा को खिंचवाया तो घिसते 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 कितना आकार आ गया जो हाथ में नहीं आया और टिकड़ी सी बन गई, इधर से खींचा उधर से खींचा और वो तीन कोना एक छोटा सा पतला सा एक लोहा बच, अब वो हाथ में पकड़ के नहीं आता। उन्होंने कहा जैसे खिलाओ लेकर के नदी में समुद्र में एक नौका में बैठा करके रात और ग्रोह का चिन्ह लेकर के समुद्र किसी का उद्धार नहीं लेता, फेंक तो दिया उसने जितना जो कुछ था बाहर में फेंक दिया किनारे लग गया और उधर में लोहे को एक मछली ने खा। अब वो सकंडा ऐसा बना लोहे से भी अधिक रुपला काटने वाला थी और इधर में वो मछली पकड़ी गई एक बहेलिए ने पाया और बहेलिए ने उसमें लगा दिया अपने सर में लगा दिया। कृष्ण देखा जैसे ये तो द्वारका में बड़ा उत्पात मच रहा है, बादल नहीं है बादल बरस है, कौवे काव काव कर रहे, कुत्ते रात में रोते हैं एक साथ मंडली बांध करके, जब अनिष्ट होना होता तो ऐसा नहीं होता। उस समय में गाय रोने लग जाए, मूर्तियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं जबकि अनिष्ट होना हो, तो ऐसे सब देखे जाने लगते। उस समय में कृष्ण ने कहा आप लोग चलो हम वहां पर जाएंगे कौन सी प्रभात से और वहीं पर दान पुण्य करेंगे और ठाकुर जी की शंकर जी के लिए आराधना करेंगे, तमाम अनिष्टों के मूल में वही हैं इसलिए उनसे हम प्रार्थना। वहां पर गए समुद्र में स्नान किया, बहुत दान इत्यादि सब लोगों ने दिया, देने के बाद में थोड़ी सी बुराई होती है मदिरा मदिरा पान किया मैरी और इसके बाद में कृष्ण तो अलग होकर के चले गए, बलदेव प्रभु जी आगे ही चले गए और वो जाकर के पेट निश्चित चार कर रहे हैं। और उसी समय में उद्धव मैत्रेय को उन्होंने श्रीमद भागवत की कथा सुनाई और इधर में बैठे से बहेलिए ने पहले तो वो प्रकंडे में लड़ कट करके जीतने थे और कृष्ण वहां पर थे उनको बहेलिए ने बाण मारा उनको लगा और वो यहां पर ये बात एक है, न तो ये युद्ध हुआ न तो कृष्ण को बाण लगा न तो कोई किसी से लड़ा, सब लोग अपने गुरु धाम में या जहां जहां से जो भगवान के परिकर आए थे वो भगवान के परिकर से अपने अपने लोगों को तस्करी ही चले गए। किंतु यह राष्ट्र लोगों को मालूम नहीं पड़ा कैसे किसी को दिखला है, टीकाकारों ने दिखा या भागवत में दिखा, साधारण मनुष्यों ने देखा कि भाई कृष्ण को बांध लगा घायल हो गए और अंत में शरीर छोड़ दिया। जो मध्यम वृत्ति के लोग थे देवताओं ने देखा कि कोई एक तेज निकल करके आकाश मार्ग में जा रहा और जो सिद्ध महात्मा थे ब्रह्मा शंकर और ऋषि नारद इत्यादि कृष्ण सरी इन परिकरों के साथ में वो लोग वृंदावन में जा रहे, उन लोगों ने ठीक देखा, तीर्थ वाले लोगों ने एक आभास की ज्योति सी देखी और साधारण लोगों ने ये सब कुछ नहीं देखा, उन्होंने लगा ये सिर लगा इन लोगों में लालपट मार हुई और उन्होंने ये बतलाया कि देखो एक राजा उसकी रानी थी उसके बच्चे थे, एक दिन एक नर खेल तमाशा देने के दिखलाने के लिए अपनी स्त्री और दो बच्चों के साथ में उसकी राजधानी में आया, राज दरबार में कहा गया बोले ये प्रभु आप आदेश दीजिए आपको खूब सुंदर सी खेल दिखलाए और यहां दिखलाओ। उसने दो बांस को गाड़ दिया और उस पर रस्सी टांग दी, दोनों तरफ में खूंटे गाड़ करके उस रस्सी को उसके ऊपर में रख दिया और वह स्वयं
ढोलक बजाने लगा।
अब इसकी स्त्री सिर पर एक घड़ा, उस घड़े के ऊपर में एक और घड़ा, उसके ऊपर में एक और घड़ा लेकर के झटझट न जाने कैसे उसी रस्सी पर से उसके ऊपर में पहुंच गए। हाथ में एक डंडा ले लिया और उसी पर नृत्य करते हुए कभी उधर से उधर जाती है और उधर से इधर आती है, गिरती नहीं और न घड़े गिरते हैं। देखकर के ताली बज गई और सब लोग वाह वाह करने लगे। रानी ने अपना एक सुंदर सोने का नौलखा हार निकाल करके उसको जब आई नटी नटी के गले में पहना। पहनाने के साथ उसके दोनों लड़के 8 और 9 वर्ष के थे, बड़े सुंदर स्वस्थ। वो दोनों आए, मैया हमें दे, मैया हमें दे, छीनने लगे। मैया ने गले से निकाल दिया और छोड़ दिया हार। अब वो अपनी तरफ में जब देखा जैसे ये नहीं दे रहा और वो नहीं दे रहा है, दोनों बलवान बराबर के हैं बच्चे, कोई किसी से छीन नहीं पाता, तो दोनों ने एक साथ में अपनी म्यान से तलवार फेंक ली और उसने एक साथ में ऐसा तलवार मारा दोनों के गले, उसने उसको काट दिया, इसने था और दोनों की रुंडमंड गिर गए। नहीं हाय हाय ये क्या हो गया, हमारे बच्चे मारे गए। दौड़ती ही आई और एक बच्चे की तलवार लेकर के अपना गला काट। इसने पति ने देखा, अरे ये क्या, हमारी स्त्री भी मरी, बच्चे भी मरे और मैं अकेले आ रहा करके क्या करूं। दौड़ता हुआ है, एक बच्चे का वो तलवार उठाया और अपना भी गला काट करके वो भी खड़ा। वहां पर एक धम्मासन छा गया। हाय हाय ये क्या हो गया, यहाँ पर सुंदर खेल चल रहा था, सब ताली बजा रहे थे और यहाँ पर ये तमाशा हो गया। बड़े दुखी हो गए, थोड़ी देर के बाद उसको फेंकवा दिया। इसके बाद में बड़े दुखी थे। 2 दिन के बाद में राजा के पास में, रानी के पास में एक लेकर आया। महारानी जी, आपने पहला खेल देकर के हमको तो आपने 9 लक्खा हार दिया, वो मुझे मिल गया, किंतु अंतिम जो खेल देख लाई हम लोगों ने, आपने कुछ उपहार नहीं दिया, न हमारे बेटे मरे, न हम मरे, न हमारे पति, हम लोग खूब राजी खुशी हैं। अब इस खेल का कुछ पुरस्कार चाहिए, आपको यदि विश्वास न हो तो हमारा घर का ये ठिकाना है, आपके राज्य के पास ही में रहती है, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। राजा रानी बड़े प्रसन्न भय और उन्होंने रथ पर चढ़ कर गए। यह देखने के लिए सख्त बात है कि दूत वहां पर गए, देखा कि मुस्कुराते ही वो नदी अपने बच्चों को और पति को लेकर के रानी को फूलों का गजरा लेकर के स्वागत करने के लिए खड़ी है और कहे कि हमारा पुरस्कार कहाँ है रानी साहिबा। ये देख के आश्चर्यचकित हो, यदि यह नट एक ऐसा कर सकता है तो जो नटों का भी नटों का मूल नट है कृष्ण है, वो नहीं दिखला सकते माया से, नहीं दिखला सकते, वो तो नटवर है ना, उस माया के मालिक है, जादू मंत्रों के भी मालिक है। अभी मथुरा में भी कुछ दिन पहले यही जहाँ पर किसी का बाजार बनाया, वहीं पर कलकत्ते के वो जादू वाले कोई आया था, वो तो आकर के दिखला रहा था, दिखलाया क्या, एक बड़ा भारी लोहे का संदूक रखा और उसने ताला 8 गज बड़े बड़े आए, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ के SP और सब लोग आए थे। उसने अपने बच्चे को सुला दिया और तलवार निकाली या छुरी और चाकू निकाल करके उसका गला काट दिया, देखते देखते कपड़े के अंदर रख करके, कभी ये क्या कर रहा। वो कोई एकदम बेपरवाह गला ही काट दिया और ऐसे ऐसे होने लगा, मरा। इसके बाद में सब लोग समझिए गला काट दिया और गला को निकाल करके अलग से और बस्ते में बंद कर दिया लोहे से। मजिस्ट्रेट के कहा जिसे आप ताला बंद कीजिए और चाबी अपने पास रखिए, 1 में 4-5 ताले लगवा दिए बड़े बड़े। लगाने के बाद में अब लोग कहेंगे अब क्या करता है, उन्होंने कहा कि अरे बेटा जरा आना तो, बेटा आ जाना तो, पिताजी मैं आ गया ये करते जो करते लोग। यदि ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा और वो कितनी जादू की बातें हैं, कितना कौन एक जादूगर सामान्य अपने रोजी के लिए ऐसा कर सकता है, ये प्रभु नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण को कोई नहीं मार सकता। कर्ण का बाण, जिनको भीष्म का बाण, जिसको काली नगर नाक के एकदम बीच का उस बेस जिसको यहाँ यहाँ चारों तरफ पर काटा और उसमें डूब गए और नहीं मरे, जिन्होंने आपको खा लिया नहीं मरे, जिन्होंने गोवर्धन को धार किया और नहीं मरे दब करके, जो कि जंपुल में चले गए समुद्र को पार करके और तमाम अंधकार और पृथ्वी को और आठ आवरणों को पार करके महाकल जमपुरी में जा करके जिसका कुछ बचा हुआ नहीं था, हार भी नहीं था, और उसको वहां से लेकर के अपने गुरु जी को वो अपनी गुरु मैया को दे दिया। आपने सुना जिन्होंने उनके देवकी के पुत्रों को कितना दिन हो गया है और उनको फिर से बुला करके देवकी का दूध पान कराया और फिर कोई कृष्ण का जीता होने की वजह से उन लोगों को जमीन स्पर्श किया तो ही मुक्त होकर के चले गए। ऐसे कृष्ण को कोई मार सकता है? ऐसे कृष्ण को परिकरों को कोई मार सकता है? इसलिए कृष्ण की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो लोक माया के द्वारा होती हैं, जिनकी हम लोग कुछ समझ नहीं सकते इसलिए कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण की अंतर ध्यान लीला को इसी रूप में समझेंगे। वहां पर कोई युद्ध मारकाट नहीं हुआ, वो तो भैसी बाजी थी, उन्होंने ऐसा दिखला दिया और सब परिकर सही में वहां चले गया। इसी तरह से बहुत सी लीलाएं हैं, समय के अनुसार में वर्णन करूंगा। हमारे लिए कुछ नीचे भाग्या भी है, अधिक मत बोलिए। तो उसने सब भाग्या को भी मैं दूर करते हुए थोड़ा सा बोला और दस बज गया है, समय भी हो गया है। आज शाम को आप लोग 5 बजे आ जाएंगे, जैसे 5 से 6 बजे तक हमारी कथा अच्छी तरह से चलते रहे। ये हम इस कथा को समाप्त करके थोड़ी सी कथा रखेंगे कल के लिए, सवेरे के लिए। आज हम लोग 6 बजे करीब हम यहाँ से रथ यात्रा कृष्ण बलदेव और जगन्नाथ जी को लेकर के यहाँ से सीधे होली गेट में भी तक जाते हुए वहाँ से विश्राम घाट और यमुना के घाटों से होते हुए आज समाज रोड से परिक्रमा करते 8 बजे के पहले ही आने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर प्रसाद लेकर के तब फिर अपने घर में जाएंगे और कल फिर हम लोग जैसे रोज होता है 7 बजे से जैसे आरंभ होता है वैसे ही भागवत आरंभ होगी। उसका कुछ जो बाकी रहेगा और शिष्ट करके पूरा करके और तब यहाँ पर हम लोग हवन इत्यादि कार्य करेंगे। हवन इत्यादि का कार्य होने के बाद में सब अपने भागवत की ये हम करेंगे आरती उतारेंगे, इनकी पुष्पांजलि देंगे और ये भागवत जी हमारे हृदय में रहे सदा के लिए इसकी प्रार्थना करेंगे और तब हम लोग कुछ प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और प्रसाद को थोड़ा बहुत लेकर के आप लोग तब फिर अपने घरों में जाएंगे और सदा के लिए इस भागवत को अपने हृदय में रखेंगे। हम लोग जहाँ तक चेष्टा करते हैं कि आजकल कथाओं में भी सार नहीं, ऐसी हमारी कथा न हो, पैसे का कोई प्रश्न न रहे, पैसों के लिए भागवत को बेच देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग तो चाहते हैं आपका हृदय ये पुष्पांजलि के रूप में लेकर राधा कृष्ण के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर दें। आप लोग ऐसा ही तैयार होकर के यही पुष्प लेकर के आएंगे जब आज से हम लोग राधा कृष्ण की हो गई या हो गया भजन करते हैं, या कृष्ण के जो अवतार हैं राम इत्यादि हैं उनका भजन करना भी कृष्ण का ही है, किंतु फिर भी कृष्ण की लीला का कुछ वैशिष्ट्य है। अभी तक हम लोगों ने इसका वर्णन किया, आप लोग इस चीज को हृदय में रख सकते हैं, पुष्पांजलि ले आएंगे और कृष्ण के चरणों में ये भागवत स्वयं कृष्ण है, यहाँ पर गिरिराज जी भी हैं, आप उनके चरण में पुष्पांजलि दे करके हमारा यह भागवत कथा का द्वादश श्रृंखला सत्र समाप्त होगा। गौ प्रणामे
सद्गुप्ति ब्रह्मुक्ति के उपाय करू नाम संकीर्तन को दिखाया कि सत्यनाम उद्धार होने के लिए एकमात्र हरे रावण के तरह इस प्रकार वर्णन करते हुए चतुर्थ की भागवत आदि का वर्णन तृतीय स्कंद में सृष्टि तत्व का वर्णन करते हुए अपने देव से संवाद दिखाया जिसने संसार की सृष्टि रचना को दिखा दे के उससे वर्णन करते हुए उपाख्यान के द्वारा नवृत्ति मार्ग की ओर ले गए। पंचम स्कंद में स्थान विश्व ब्रह्मांड के जितने भी स्थान है, भगवान का विश्व लोक है, उन समस्त लोगों का वर्णन करते हुए अप्राकृत धाम प्राकृत जल धाम के प्राकृत वैभव धामों में अपने विराजमान करते सबकी रक्षा करते भक्त चरित्र में भरत महाराज की उपाख्यान के द्वारा भगवान कवि इस संसार का चित्रण खेलते हुए उससे एक और वैराग्य पूर्ववान के चरणों में भक्ति इस प्रकार से में हुआ। में कोषा पूर्ववान अपने नामों के द्वारा समस्त विश्व जगत के प्राणियों की रक्षा करते हैं। अजामिल उपाख्यान के द्वारा दिखाया जो हम सब की जो धारणा होती है संसार में हमारे रक्षक कितने हैं, परंतु कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। हम ही गलती से सूर्य विकृति से जब कोई रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे अजामिल को कोई रक्षा नहीं करने पाया। और भगवान नाम जो कि अजामिल सारी गलतियों को करते हुए पाप कर्म नहीं कर्म करते हुए दूसरे के लिए किया तो उससे भगवान ने उसकी रक्षा की। इस प्रकार भगवान कैसे दयालु है कैसे रक्षक है ये समस्त नाम की महिमाओं को दिखाया। उपाध्यान के द्वारा भी एक असुर कुंड में जवाब लेकर के कैसे उनके अंदर भावना प्रेम गोपियों का ये गोपी भाव का ये निराशन हर कुछ का एक विशेष लक्षण के रूप में दिखाया। सप्तम स्कंध में मंत्रों के अनुग्रह से असुर कुंड में जवाब लेकर के भी प्रहलाद महाराज कैसे महाभाषण कर रहे हैं और वैकुंठ के द्वार पर जय दिया असुर कुंड कैसे भी उतर आते हैं। ऐसे कर्मों की जो मुख्यावत गति है महत्व का परम अनुग्रह ये समस्त दिखाया गया महत्व अनुग्रह उनकी कर्म वार्ता को दिखाया। अष्टम स्कंध में भगवान मनुष्य अवतारी के रूप में कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं जिस दानवों के विवाद को समापन करते हुए बलि महाराज को अपनाया इस प्रकार उनकी भक्ति ये समस्त दिखाया। चंद्र है सूर्य वंश चंद्र वंश के द्वारा जिस वंश को भगवान ने अंगीकार किया है ऐसे उनके वंशावली चिंतन किया है उन वंशों के राजा महाराजाओं का महान पावन चरित्र वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नवम चंद्र का विज्ञान और वैराग्य की बात है। प्रथम चंद्र जो समस्त भक्तों के लिए मात्र आश्रय है प्रथम प्रथम अवरतम आश्रतम आश्रय विग्रह श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जय धाम कृष्ण श्री कृष्ण के उधार रिंद जो समस्त भक्त जनों का आश्रय है ऐसी समस्त की कृष्ण की लीला कथाएं जो 125 वर्ष तक इस जगत में छाती है गुरुवार ने अपने लीलाओं को प्रकट किए हैं ऐसी लीला आस्वादन करना है समस्त भक्त जनों का एक मात्र आश्रय है यही कर सकते हैं। इस प्रकार ग्यारहवें स्कंध में कृष्ण लीलावत का कैसे आस्वादन हो इस जीवन को कैसे भक्तिमय भावमय बनाया जाए तो मेरी नवजीवंद्र संवाद के द्वारा कृष्ण उद्धव संवाद में इस समस्त कथानक को प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन को भागवतमय बनाए और उसी प्रकार अपने जीवन को उठा लें भगवान की भक्ति में डूब जाए और डूबते हुए प्रभु के लीला कथाओं का स्मरण करते हुए अष्टम का पूरा विशेष अष्टाते भाव का बुलाए उनके चरणों में प्रेत बुलाए हूँ उस सबको दिखाया कि गोथे उद्धव श्रुतियों में शास्त्रों में विधि नीचे मेरे द्वारा कहे गए धर्म अधर्म ये सब को तुम परित्याग करो एक मात्र गोपियों के भाव में डूब कर गोपियों के चरणों में शरण लो और उनके भाव में डूब जाओ यही जीवन का था। इस प्रकार के आदत चंद्र में अंत में उपसंहार करते हुए कहा हे उद्धव जो भक्त सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं मेरा भजन करते करते एकांत रूप से जब सर्वस्व समर्पण कर देते हैं तो मैं भी उनको अपना लेता हूँ। एक दिन इस शरीर से छुड़ा कर मैं शुद्ध आत्म स्वरूप से मैं अपने पास ले लेता हूँ उसको अपना परिकर बनाकर उनके प्रेम रस सेवा को मैं ग्रहण करता हूँ प्रेम रस के आस्वादक बनाता हूँ इस प्रकार देव भाग्य करता हूँ। ऐसे ऐसे कहते कि राजस्कंद नहीं प्रलय का वर्णन किया, संसार का प्रलय होता है, उस प्रलयों के बीच में सभी युग में कैसे काल के द्वारा प्रभावित होकर मनुष्य भटकते हैं, भटकते हुए मनुष्य आज के युग में सावधान हो गया और भगवान के नामों का कीर्तन करें, करते करते इस संसार को पार हो कर चलेगा। इस प्रकार शिशुर गोस्वामी जी कहते हैं, समस्त शास्त्रों का सार है अंतिम और भागवत, जो कि निष्काम विशुद्ध प्रेम का वर्णन करते हैं।
भागवत की कथा संपन्न हुई निर्देश रूप से। हम इसके संबंध में दो एक बातें आप लोगों को कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि भागवत समाप्त होने पर जबकि सुखदेव गोस्वामी वहां से प्रस्थान कर गए और इनको जो कुछ निर्देश देना था उन्होंने दे दिया, तपस्वी महाराज जी मौन हो गए और कृष्ण चिंता में लवलीन होने वाले थे। इसमें उनकी मैया ने कहा, उत्तरा जी ने, बेटा मैं पिछली जाती हूँ, मेरे दुख भी बहुत कम है, सुना तो जरूर किंतु मैं पूरी बात को नहीं समझ सकती, इसलिए संक्षेप में इसका सार हमको पुनः सुना। उस समय में वो बड़े प्रसन्न होंगे क्योंकि मौन की अपेक्षा समाधि की अपेक्षा कृष्ण लीला का स्मरण करना और उत्तम है, इसलिए वो भगवत चिंतन छोड़ करके अपनी मैया को जो उस समय श्रीमद् भागवत का जो सार समझाया उसी को बृहद भगवतामृत कहते हैं। हमने उसका यहाँ पर एक वर्ष से यहाँ पर हमने उसका पाठ किया, बल्कि दो बार किया, अभी थोड़ा सा बाकी है, उसको फिर से हमने आरंभ किया है, उसको कहते हैं भक्ति रसायन। इस प्रकार से सुनाने के बाद भी मैं इधर सुन रहे थे और कितने में इधर किया होता है, कली वहां से चला सब जो जिसको उनको काटना था, जब वो चला तो उसने काले ब्राह्मण का रूप बना लिया और उसका नाम उसी समय है एक कश्यप नाम का औषधि किसान जिसको कहते हैं
धन्वंतरी,
कश्यप उनका नाम था, उनका ही उपाधि है धन्वंतरी। वो वहां से चले, आज परीक्षित महाराज जी के सबाने जाएंगे और परीक्षित को सांप काटेगा और मैं उनको बचा दूंगा, पूरी तैयारी जड़ी बूटियों के साथ में मंत्रों के साथ में वहां पर चले। कितने में वो काला मुस्तंड खली वो सर्प का रूप धारण करके उनके पास में आया, वो भी ब्राह्मण का ही रूप धारण करके उनके पास में आया, बोला जी आप कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी? मैं जा रहा हूँ परीक्षित के, इसलिए वहाँ पर सांप काटेगा उनको और मैं उनको जिसका दूँ। अरे आप नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ तीन बार कहता हूँ आप मुझे बचा सकते, उन्होंने मैं तीन बार कहता हूँ कि बचा लूंगा। अच्छा समय के लिए बरगद का एक बड़ा विशाल पेड़ है, मैं उसको काटता हूँ तो उसको बचा दो। अच्छा ठीक है काटो, बस अपने पूरे पेट के साथ में, पूरे बीज के साथ में और उसके जड़ में एक ऐसे बल मार, और मारते ही क्षण मात्र में वो पेड़ एकदम सूख करके जल करके खाक हो गया, उसकी जड़ भी जल गई। उनके तरफ में देखा वैद्य की तरफ में, और उन्होंने कश्य जी ने अपनी थैली से निकाला जड़ी बूटियों को और पीस करके और मंत्र के साथ में अपने हाथों में वो लेकर के तरल पदार्थ उसकी जड़ में फेंक दिया, और जड़ में फेंकते ही उसमें से नई कोमल निकली, बरगद का पूरा विशाल वृक्ष हो गया और फिर जैसा था वैसा ही हो गया। कहा जाए ये तो बचा लेगा, अब क्या किया जाए? ऋषि ने, ऋषि के लड़के ने साफ किया जरूर सक्षम डांटेगा और मरेगा तो ये बात मिथ्या हो जाएगी। उन्होंने सोने के थाल में अशक्तियों से भरी हुई उनके सामने लेकर के रख दिया। अरे जा रहे हो वहां से तो रुपये ही तो मिलेंगे, तो मैं भी तुमको क्या दे रहा हूँ, ये सोने अशक्तियों से ये ले जाओ। उन्होंने इसको क्या कहते हैं लून की नदी, इतने दूसरी थाल उनके सामने रख दिया, मुख से पानी निकल आया और लोग को नहीं संभाल कर सके, और कहा उन्होंने समझ लिया और वहीं से वो लौट करके चले। सब इसके बाद वहां पर पहुंचा और एक माला ने छोटी सी एक कोई ऐसा होकर के उसने प्रवेश किया जो उनको परीक्षित महाराज जी के गले में देनी, और इसी के पहले उन्होंने कृष्ण को अपने और राधा जी के चरणों में अपना चित्त लगा दिया, शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लिया, ब्रह्मांड में ले आया और ब्रह्मांड से निकाल करके राधा कृष्ण के चरणों में प्रतिदिन उन्होंने लगा दिया। उनका शरीर एकदम सूख करके वो एकदम काटा हो गया। इसके बाद में उसी स्थिति में लोगों ने समझा कि परीक्षित महाराज आए, किंतु उन्होंने शरीर को पहले ही छोड़ दिया और कृष्ण के चरणों में वो चले गए। इसके बाद में तक माला में प्रवेश करके वहां पर आया और फिर तक्ष का रूप धारण करके सब लोगों के सामने उस शरीर को जो मरा हुआ था उसमें दसा, और वो एक क्षण मात्र में जल करके खत्म हो गया। लोगों ने समझा कि परिस्थिति को काटा, किंतु काटा किसको? उस मट्टी को काटा, उसको स्पष्ट नहीं कर सकता। यदि प्रहलाद महाराज जी को मीराबाई को एक चीज कुछ नहीं कर सकता, तो इनको परिस्थित महाराज जी को जो सात दिन तक भागवत की कथा सुनी, जिसको सुन करके और सब लोग विमान के सहित में बैकुंठ में चले गए, ये मर जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज जी की मृत्यु नहीं हुई, वो तो कृष्ण के परिकार थे, वो भागवत को इस जगत में प्रकाश करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रकाश किया और लीला संवरण, इसलिए वो मरे नहीं, आज भी वो अमर है। इसलिए जो भगवान की कथा सुनता है सभी अजर अमर नित्य शाश्वत और सुखी, इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप लोग भी कभी मरेंगे नहीं, आप लोग भी कभी मरेंगे नहीं। जो भागवत की कथा यदि सब सच में सुना है और इस कान से इस कान में निकाल नहीं दिया, जरूर कभी नहीं मर सकता। दूसरी बात, एक चीज का स्मरण होता है, महिलाओं की संख्या देखकर के पुरुष लोगों को थकलते थकलते महिलाओं की भक्त महिलाओं की भीड़ ने उनको एक कोने में फंस दिया, वो इधर एक कोने में रह गए, थोड़े से केवल है, केवल महिलाओं भक्त महिलाओं का यहाँ देख करके उनको याद आता है। कृष्ण जी जगत में आविर्भूत हुए थे किस लिए? जदा जदा ही धर्म अक्सर ग्लानी भाव सुधार, धर्म की संस्थापना करने के लिए, और असुरों को मार करके पृथ्वी का भार हरण करने की। महाभारत युद्ध में कितने अक्षौहिणी लोग मरे?
18।
इनमें एक महिला मरी क्या? कोई महिला मरी थी? न पुरुष मरे। और कालजवन के युद्ध में जरासंध के आक्रमण में 18 बार में युद्ध में कोई एक महिला मरी? मरा कौन?
पुरुष लोग मरे
तो ये पृथ्वी का भार कौन था? पुरुष रूप में कैसा जो कि भगवान का पता नहीं सोते हैं। इतनी शक्ति हरी कथा यहाँ हो रही है, महिलाओं महिलाएं आ रही हैं, अभी पुरुष लोग हैं किंतु बहुत संख्या में कम। कथा का आयोजन भी महिलाओं ने ही किया, पुरुष है किंतु प्रत्यक्ष रूप में वही है मूल उद्योगता। हमारी प्यारी देवी क्या है?
विमला संधि,
विमला देवी। और इनके संबंध से इनके जीजा जी और इनकी बहन बहन और इनके संपर्क से और सभी सभी लोगों का सहयोग है, इन लोगों का नहीं है। इसे कुछ महिलाएं जो है एकत्रित सभी का है, किंतु महिलाओं का ये देखता हूँ। कृष्ण लीला थी, अश्रु का तो संहार किया, और दूसरा एक और कारण था आने का, क्या? वो रसिक से खड़ा रस आस्वादन करना होता है। जसुदा जी के वात्सल्य और नंद बाबा के वात्सल्य किया, किंतु नंद बाबा के वात्सल्य से जसुदा जी जो महिला है भक्त है ना, उनका प्यार कृष्ण के प्रति बहुत अधिक है, वजन नहीं किया जा सकता। और कृष्ण के सखा लोग हैं सुदाम मधुमंगल सिदाम इत्यादि, और इधर में कृष्ण की सखियां हैं ललिता विशाखा इत्यादि। सखा लोग कृष्ण की बहुत सेवा करते हैं, और उन्हें सर्वोत्तम सखाओं की सेवा क्या है? किसी को यदि ब्रज में गोपियों को मनाने के लिए भेज दिया तो कभी गोपी को कहा कि तुम जाओ सखा को मना लाओ? इसलिए सखाओं से भी गोपियों का प्रेम का महत्व बढ़ता है। इसलिए कृष्ण रसास्वादन करने के लिए जो आए, सखाओं के साथ में रास नहीं हुआ, सखाओं के पास में भ्रमर गीत नहीं हुआ, भ्रमर बन करके नहीं गए। किनके लिए आए भ्रमर बन करके? किनको मनाया? स्मरण बर लखन राम मम श्रेयसी मंडलम देवी पद पौलमुदा। ये किसको कह रहे हैं? किसी को और किसी को? इन गोपियों के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवत जो है ये राधिका के लिए किया गया है। कृष्ण का राधिका के प्रति जो भाव है जो किसी भी शास्त्र में नहीं वर्णन किया गया, उसका ही श्रीमद्भागवत में उन्होंने वर्णन। कोई कोई कहते हैं राधिका जी का नाम ही नहीं है, अरे मूर्खो अंधो राधिका जी का नाम नहीं है। अच्छा बतलाओ, मैं नाम नहीं दूंगा किंतु आप जितने हैं आप नाम देखेंगे अपने आप समझ जाए। एक लड़का था बड़ा सांवला था, हाथ में मुरली लिए हुए है और यहाँ पर पीताम्बर है, त्रिभंग रूप में खड़े होकर के बड़े सुंदर से राधे राधे बंसी में बजाता है। ये कौन है? कहने की जरूरत, जवाब देने की जरूरत है? एक सांवला सलूना पीताम्बर धारण किए अपने हाथों में बंसी रखे हुए इस गोवर्धन को धारण कर लिया, ये बतलाओ तो कौन है गोवर्धन को धारण करने वाला? ये नाम बतलाने की जरूरत है? उसी तरह से रात हो रही थी और एक गोपी अंतर ध्यान होकर के चली गई और कृष्ण ने रात बंद कर दिया, उसको खोजने के लिए ढूंढने के लिए चले कि इसका नाम क्या है, ये बतलाने की जरूरत है? इसलिए ये तो संपूर्ण भागवत में आदि से लेकर के जितने भी ये 12 स्कंद है सब जगह राधा जी का गोपियों का नाम। दूसरी बात, उसमें 300 कितने कितने उसमें अध्याय हैं?
335।
अच्छा, वो समस्त अध्याय राधा जी का नाम से। यही नहीं, मैं तो जानता हूँ और हमने अपने गुरु वर्गों से सुना है, ऐसा कोई श्लोक नहीं जिसमें राधा जी का नाम है। श्रीमद भागवत का कोई एक श्लोक लाओ तो जिसमें रावण नहीं लिखा हो, है कोई? देखो जा सके, ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिसमें रावण नहीं है। सरो से क्या होगा? राधिका, अरे आंखो राधिका जी का नाम नहीं है, उनके लीलाओं से तुम नहीं समझ रहे। आदि पहला ही श्लोक है, पहला ही श्लोक में जन्मा दस्य जता अन्वय आदि करता जो अर्थ और दिग्घोषरा ब्रह्म विद्या आदि कवय मुह्यंती सूर्य तेजो भाग्युदान जत्र विनिमयो सर्वो अमृता धामना स्वयं सदा निरस्त उभुग सत्यम परम। इस राजकार के लिए नमस्कार। इसको नहीं समझने से ऐसे समझो निगम कल्प सर्वगतिमुखम सुखमुखा अमृतम शिवत भागवतम रसम आलयम अरस कहाँ है श्रीमद भागवत में। राधा जी को हटा दो भागवत से और रस निकालो तो निकलेगा कोई रस? राधा जी ने यही शक्तियां ले रहे निकालो खुब रस पानी किसी कोई रस नहीं। इसलिए आदि से अंत तक यहाँ पर किस समाप्त किया सत्यम परम धीमहि श्लोक इस बच्चे ने कहा उसमें ने सत्यम परम धनी राधिका जी को अंत में नमस्कार किया। राधा जी का नाम नहीं है प्रत्येक सत्र में प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक भाव में राधिका जी का नाम ओत प्रूफ है। उसमें समझने वाले समझेंगे मूर्ख लोग नहीं इसको समझ सकते। इस तरह से मेरी बात वो अधूरी रह गई जो कृष्ण का आविर्भाव जो होता है जो प्रकट होते हैं धर्म के संस्थापन के लिए अश्रुओं का विनाश करने के लिए भूभार में और धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा में भागवत में सबसे बड़ा धर्म क्या बतलाया गया परो धर्मो जतो भक्ति अहेतुक अपदंडिता जा भक्ति जितने प्रकार की आराधना है श्रीमती राधिका जी आराधना की मुक्त विग्रह है वो स्वयं ही आराधना है। इस श्लोक में उनका नाम स्पष्ट रूप में दिया गया है ओम राधिका नमः उसमें भी राधिका जी का नाम उसमें है। इस राधिका जी के सत्य के प्रति प्रेम को स्थापन करने के लिए ये सब चीजें इसमें रमानाभ कितने श्लोक हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए इस गोपियों के प्रेम को दिखलाने के लिए ये श्रीमद् भागवत का प्रकाश हुआ असल में ये। इसलिए प्राचीन काल से हम देखते हैं कि कृष्ण ने ये महाभारत युद्ध जो किया इसका मूल क्या कारण था। उनकी प्यारी एक द्रौपदी का अपमान किया गया और उस एक महिला के अपमान के लिए वो कैसी परम भक्त कृष्ण थी और उस महिला के अपमान के लिए कौरव दलों को और इन सब दलों का एकदम विनाश भंग कर दिया। एक सीता जी के लिए रामचंद्र जी ने किया समस्त राम और पशुओं को अंत कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर ऐसे ही ये सब महिलाएं अधिक संख्या में नहीं आई पुरुष लोग धन बटोरने में बहुत लगे हुए हैं अराजनीति करने में लगे हुए डकैती करने में लगे हुए जितने डकैत देखिए दो एक को छोड़कर सब डकैत मांस इत्यादि सब डकैत कौन है दाढ़ी और गोफ रखने वाले सब कालिका भयान ये सब पृथ्वी के भाग स्वरूप है आप लोग उसमें से नहीं होंगे आप लोग देवता हैं जो उसमें से ठंड करके यहाँ पर बैठे हैं। मैं देखता हूँ अभी कल कीर्तन हुआ ना सब लोग मथुरा वाले करेंगे जिनसे महिलाओं का दल इतना एकदम उम्र पड़ा और बड़े सुंदर रूप से कीर्तन किया मेरी छाती खुल करके आनंद से बढ़ गई। ऐसे ही संख्या में बढ़ाओ तुम लोग धर्म प्राचीन काल से ही तुम लोगों के हाथ में तुम्हारे बच्चे हो धार्मिक हो तुम्हारी बच्चियां हो धार्मिक हो उनके भी लड़के हो धार्मिक हो तुम लोग उनके आदि गुरु हो इसलिए इसी रूप में तुम लोग चलना। मैं निराश हूँ अगला जाती हूँ मैं कुछ नहीं ऐसा नहीं हम तो देखते हैं कि पुरुष लोग ही अबल हो गए हैं यहाँ पर देखिए समूह चलेंगे कोल इतने से इसलिए आप लोगों को देख करके मुझे बहुत उत्साह होता है आप लोग धर्म की रक्षा कर सके विशेष करके कली काल में पुरुष लोगों की है जाओ बहुत कम यदि कहेंगे भागवत पाठ भी हमें कुछ दे दीजिए नहीं देंगे सर और महिलाओं के पास में उनके पास में जो दो चार पैसे इधर उधर से उन्हीं से चोरी चमारी करके जैसे तैसे रखा है वो सब कुछ दे कृष्ण को भी ऐसे ही किया। इसलिए मैं देखता हूँ कि कली काल जितना बढ़ता जाता है ये धर्म भी कर्म भी सब आप लोगों महिलाओं के पास में सुरक्षित अब हो रहे हैं। पुरुष लोग तो भक्त ये वो चले जा रहे हैं जो राजनीति आज देखिए तो कैसा मुलायम सिंह नकटी सिंह और सब इनको देखिए राजनीति धर्म नीति को छोड़ करके राजनीति काम नीति अर्थनीति लड़ाई झगड़े की नीति सब इसी में फंसे हुए हैं। वो कहेंगे बड़े लज्जा की बात है गौरी मठ में जाकर के महिलाओं के साथ हम लोग बैठेंगे ये तो हमारा बहुत ही दुर्भाग्य की बात। मैं कहता हूँ कि उनका दुर्भाग्य है कि ये कथा में नहीं आते उनका दुर्भाग्य है। अब देखे 14 लोगों में भी छिप करके आने वाली बहुत सी चौबाई होंगी 14 लोग नहीं आएंगे। अरे हमें व्यापारी विद्वान सभा में कैसे जाऊं हमारा नाम गड़बड़ हो जाए उन लोग कहें हमारा तीर हेटा उस सभा में कैसे जाए महिलाओं की सभा में वो महिलाओं की सभा है कहें। अरे यहाँ धर्म नहीं है वहां अधर्म है ऐसा। इसलिए मैं आप लोगों को विशेष विशेष धन्यवाद देता हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप में बल दें ये आप लोग और बढ़े खूब प्रचार कीजिए। अगली बार जब भागवत की कथा हो तो हमको ऊपर में एक और नाट्य मंदिर जैसा बनाना पड़े हम लोग ऐसा बनाएंगे और सब चलेंगे। अब जन्माष्टमी आ रही है ना अभी से तैयार हो जाओ एक एक महिला अपने साथ साथ में 10-10 महिलाओं को लेकर के आए समस्त मथुरा में लोग बहुत की संकट है हरि बोल तो इसलिए आप लोग भी संकुचित और दमित मत होंगे। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनमें धर्म की कोई बात नहीं है जो उनको पास समय नहीं है कुछ भागवत की कथा सुनने के लिए भगवान का भजन करने के लिए समय उन लोगों के लिए आप लोग भी उत्साह के साथ में भगवान का भजन करेंगे और